Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad ki pratham adhyay sambandh bhashya ka vichar chal raha hai. To ye bataya, त्रैधर्मम अधर्मार्थम किम पाकफल सन्निभम किम पाकफल सन्निभम। ये जो वेद में बतलाने वाले इस धर्म कर्म इस अधर्म के लिए होते हैं, किसके समान कहा कि किम पाक फल है, यानी जिस फल में कोई रस नहीं होता है उसे किम पाक कहते हैं। हाँ, ऐसा फल जैसे सेमर फल होता है तो उसमें कोई रस नहीं होता है, कल ये बता रहे थे ना। हाँ, और ऐसे साधु लोग तो उसका रस भी लेते भी हैं। कैसा रस है कि हम लोग ये सेमर फल को भी बना के खाते थे, हम भिपिंड में खाते भी हैं। सेमर फल जानते हैं ना, रुई जो है ना, कपास जो बनता है, तो ऐसा एक जैसे परबल जैसा होता है, ऐसा फल वैसा परबल जैसा होता है और पक करके आखिर में रुई बन जाता है। अंदर में तो चीज कुछ रहती है, धीरे 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 धागा बन जाता है, सूत्र बन जाता है, तंतु बन जाता है। अब जैसे उसका पहले अवस्था में जिस समय में वो कच्चा रहता है, ठोस रहता है, उस समय में काट कर खा सकते हैं। हमारे अभी जो कैलाश आश्रम के मंडलेश्वर है बता रहे थे, उत्तरकाशी में कुछ दिन जो रहे हैं तपस्या कर रहे थे, उस समय में भोजन में कुछ मिलता नहीं था तो पत्ते कलेक्शन करके उबाल कर खाते थे। कौन से पत्ते जानते हो गया? जो पत्ते छूने मात्र से खुजलाहट हो जाता है, एकदम पूरा फोड़ा फोड़ा जैसे हो जाता है, ऐसे पत्ते को खाते थे। अब बताइए, अब कैसे खाते जानते हो गया? तो तरीका बताए कि उस पत्ते को पहले लाते थे आग में, उसका जो सूंक होता है, जो सूंक लग जाने से खुजलाहट होता है, वो सूंक पहले आग में ऐसे दिखा देते थे, वो सूंक खत्म हो जाता था, ऑर्डिनरी पत्ते बन जाता था, फिर उसको उबाल करके खा लेते थे। अब ऐसे बाबा जी महात्मा लोग जो हैं ऐसे जीते हैं, ऐसे ये जो सेमर फल है उसको पहले काट खाओगे तो परबल जैसे आपको लगेगा, और परबल जैसे लगेगा दिखाई देगा, और खाते समय भिंडी की जैसे थोड़ा लार होता है ना, चिकनाहट होता है, वो चिकनाहट थोड़ा सा लगेगा और बहुत बढ़िया लगता है खाए में, मजा से। आप यदि जैसे कोई प्याज लहसुन मिर्ची मसाला डालकर बढ़िया से बनाएगा उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा वो। हाँ, तरह तरह का चीज खा करके जीना है, कैसी भी खा कर जी लो। बाकी तो समय जो है भगवान के लिए दो। तो नास्ति तात सुखम किंचित अत्र दुख सतानुकुले, दुख सताकुले। तो जो है इसके अलावा यानी न अस्ति सुखम किंचित, और कोई सुख है नहीं है क्या? अत्र यानी इस कर्मकांड में कोई सुख नहीं है। दुख सत यानी सैकड़ दुख से ही ये भरा हुआ है। कर्म को इतनी निंदा किया गया, ये कोई निंदा नहीं है। वो इससे जो परमात्मा का ही यहाँ महात्म्य की जो है बताया हो, नहीं तो कर्म के बिना तो कुछ चलने वाला नहीं है। नहीं, ये जो है ये भाष्यकार जो है यहाँ उस समय में वो स्थिति थी जो कर्मकांड में लोग लग गए थे, पूरा सब छोड़ छाड़ के कर्मकांड में लग गए थे, और जो है परमात्मा का जो अंतर्मुख जो साधन है ये नहीं कर रहे होंगे, ऐसी स्थिति लग रहा है। नहीं तो इतना जोर मारना बड़ा आश्चर्य लगता है, कोई भी चीज उठाओ जो वही 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 आदमी। हाँ, वो तो अब उसके बिना अच्छा आगे देखो कोई आएगा व्रत से दान से तप से, हाँ अब स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, अब तप नहीं करोगे जप नहीं करोगे ये सब होगा कैसे? ये सब तो कर्म ही है, इसके बिना क्या होता क्या है? कुछ नहीं होता है। और ऐसे सुनकर क्या होता है ना, इतना बिगड़ गया अभी ये माहौल जो है, वेदांत का माहौल इतना बिगड़ गया, अब ये सुनकर इसको छोड़ छाड़ देते हैं, तो छोड़ छाड़। और जबकि कोई अब भारतीय संस्कृति में जैसे बचपन से जैसे आप सात आठ साल उम्र में आप गुरुकुल में जाते थे, गुरु के सानिध्य में रहते थे, उनकी सेवा करते थे, जंगल में रहते थे, तितिक्षा होती थी, तपस्या होती थी, और फिर बोझ कर्म में लगाते थे, ये जप करो, वो जप करो, गायत्री का जप करो, यज्ञ करो, हवन करो, ये तो कुछ है नहीं है। अब ऐसे करते करते जब पूरा वो धुरंधर बन जाता था, एक तपस्वी बन जाता था, सामर्थ्यवान बन जाता था, उसके लिए ये मोक्ष की साधना अनुकूल होता था। अब हम लोग तो कभी कहीं किसी संत के सानिधि में आ गया, कोई सत्संग सुन लिया, कहीं किसी को 40 साल उम्र है, किसी का 60 साल, किसी को 30 साल, ना पहले से ना कोई गायत्री जप, ना यज्ञ है, ना हवन है, कुछ नहीं। अब सुन लिया, अब तुरंत जो कुदी मरेगा कि चलो मैं जो है ज्ञान से मैं प्राप्त करूंगा, ज्ञान है ना, ज्ञान से मैं प्राप्त करूंगा, कैसे संभव है वो? इसलिए सब परेशान है, किसी के हाथ में ये वस्तु जो है आती नहीं है, किसी के हाथ में आती नहीं, फिसल जाती है वस्तु जो है, क्योंकि पहले वे उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। उस ज्ञान को सुनकर के जो धारण करने की, जो बुद्धि में जो धारण करने की जो शक्ति है, जो गायत्री जप से जो बोलते हैं ऊर्जा, जो एक शक्ति जो है, वीर्य जो है अधिकतम, जो ध्यान करने की जो एक शक्ति है, धारण करने की जो शक्ति है, तो बोध है कर नहीं पाता। क्यों, कैसे कर पाएगा वो? ये बुद्धि इतनी कमजोर है, भोग आदि करके इतनी कमजोर पड़ा है, ब्रह्मचर्य जीवन जापन नहीं है। बचपन से ही लड़के लड़की जो घूमते रहते हैं क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, अब क्या ब्रह्मचर्य पालन है वो? हाँ, देखते बातचीत करते कैसे, क्या नाटकबाजी है। बाहर जाओ, वही वही वही, कहीं भी घुमाओ, नजर घुमाओ, वही वही, कुछ बचता नहीं है आदमी, कैसे बचेगा वो? कुछ भी करो, कितनी मोड़ करके फिर लाओ, फिर जो है फिर वही वही चीज दिखाएगा, बचेगा कैसे आदमी? अभी भी सुन करके आया हूं, एक ब्रह्मचर्य हमारे पास भी पढ़ा था काशी में, कितना 15 साल मैं देखा हूं। अब मुलुक में गया, अब इतने पढ़ने के बाद गया, कहां जाकर थोड़ी सी एक आश्रम बना करके थोड़ा सी कार्य जो है करने के लिए इच्छा हुई। अभी इतने साल पढ़ने के बाद, 20 साल पढ़ने के बाद इतने पढ़ा लिखा सब कुछ किया, फिर तो हमेशा तो वृत्ति एक प्रकार नहीं चलेगी। फिर जाकर किसी को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा कल्याण करूंगा, गया, अब जो सुना है कि वो किसी को शादी कर लिया, आप बताइए, अब उसका कल्याण है। कितनी दुख की बात है, समस्या ही समस्या है, घरों में समस्या, विद्वान पंडितों में समस्या, साधुओं में समस्या। पंडित लोग सुनाते हैं कि एक अच्छा कोई पंडित नहीं मिलता है हम लोगों को, कोई शिष्य नहीं मिलता है कि वो भी सही ढंग से कर्मकांड करे, गायत्री में निष्ठा हो, जप करे, वो बोलते हैं। हम लोग जब मिलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोई अच्छा शिष्य नहीं मिलता है, थोड़ा सा बढ़िया से कोई पढ़े करे संभाले, नहीं मिलता है। आप लोग बताते हैं कि समझिए हम लोगों के पास कोई ऐसा संतान ऐसे नहीं होती, कोई पुत्र नहीं होता है कि पैसा को थोड़ी सी सदबिनय करे, संभाले, करे दान धर्म, करे ये करे वो करे, कोई नहीं मिलता है। सभी के सामने समस्या है और इसको ही काटा जा रहा है, इसको ही, इस कर्म को ही काटा जा रहा है। जिस कर्म से सामर्थ्य आने वाला है उस कर्म को काटा जा रहा है, इसका मतलब कर्म को नहीं काटा जा रहा है, नहीं है। ये करना ही है, केवल वो पारमार्थिक दृष्टि से वो उसका, उस मोक्ष का साक्षात कारण जो है ज्ञान है, बाकी कर्म के बिना कुछ नहीं होने वाला है। जगत सत्य ही है, जगत पूर्ण रूप से सत्य है। अब जिसको ज्ञान हो जाता है उस जगत में, उस जो चेतन सत्ता को जो उपलब्धि होती है उसको, ऐसे समय में इस जगत जो है जो मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, बाध हो जाता है। और तब तक आपको करना है, मर के जी के निभाना है। निभाओगे तो बुद्धि में सामर्थ्य आ जाती है और छोड़ छाड़ के वो ज्ञान प्राप्त होता है, इसके बिना कोई गति नहीं है। तस्मान मोक्ष आई यतता कथम सेव्य मयात्री। हाँ, फिर उसके लिए जो है बहुत ही तो बता दिया था, अज्ञान पाश बद्धत्वाद अमुक्त पुरुष स्मृत, ये बताया। हाँ, अज्ञान रूप बंध से बंध जाने के कारण वह पुरुष जो है अमुक्त हो जाता है, अमुक्त हो जाता है अज्ञान पास बन जाने का। ठीक है, और भी कहा कि ज्ञान तस्य निवृत्ति ही स्याद प्रकाश सात तमस यथा। ठीक है, ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है, जैसे यथा जैसे तमस प्रकाशात तमस, हाँ प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति होती है, हट जाता है अंधकार। ठीक, तस्मात तस्मात ज्ञाने न मुक्ति स्यात्, इसलिए जो है ज्ञान से मुक्ति होती है। अज्ञान से परीक्षयात, अब कैसे मुक्ति होगी जब तो अज्ञान निवृत्ति नहीं होगी, कैसे होगी? परीक्षयात क्षय, क्षयात में फिर परि उपसर्ग है, यानी चारों ओर से सभी ओर से पूर्ण रूप से जब ये अज्ञान जब नाश नहीं होगा तो फिर ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। अब अज्ञान का नाश करने के लिए अज्ञान से उत्पन्न जो ये कर्म आदि जो है ये कर्म सही ढंग से करो। हाँ, अभी पिता माता हमको सन्यासी बनाने के लिए इसीलिए मौका देंगे, यदि पिता माता का कर्तव्य निभा वो संतोष हो जाएंगे, हाँ बेटा ठीक है तो भी जा सकता है, ठीक कोई बात नहीं है। संतोष होकर छोड़ दे, अब संतोष कराने के लिए माता पिता संतोष उसका कर्तव्य निभा, अब पूरा वो संतोष हो जाए, हाँ ठीक है तो जा सकता है, इतनी तक करे ना वो उसको। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त स्वधर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म जबरदस्त पकड़ लेना कदापि उचित नहीं होता है, व्यक्ति बर्बाद होता है। इसलिए बार बार वर्ण आश्रम का धर्म यही आपका स्वधर्म है, यही आपका स्वधर्म। देखो अभी आएगा आगे, व्रतानी दानानी तपांसी यज्ञ सत्यम च तीर्थ आश्रम कर्म योगाः स्वर्गार्थम एव, ये सब स्वर्ग के लिए होते हैं, सुख के लिए होते हैं। हाँ, व्रत हैं, दान हैं, अब बताओ अब व्रत नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, त्याग नहीं करोगे, तप नहीं करोगे, हाँ यज्ञ नहीं करोगे, सत्य नहीं बोलोगे, सत्य के पथ में नहीं चलोगे, सत्य परमात्मा का चिंतन नहीं करोगे, उपासना नहीं करोगे, हाँ सत्यम च तीर्थ तीर्थ पर्यटन नहीं करोगे, संत महात्मा को जाकर के दर्शन नहीं करोगे, नदी हाँ तीर्थ में जो नदियां हैं वहां जाकर स्नान नहीं करोगे, और तीर्थ में जाना है मजा मजलिस में, बस होटल में बुक करना है कमरा और जाकर मजा मजलिस में रहना है। और तीर्थ किस लिए तीर्थ है? तीर्थ में भी सारे साधन को जुटा के तीर्थ में चलना है, किस लिए तीर्थ है? इसलिए जो है ये जो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। हमारे पास एक कोई लेडी आई कुछ पढ़ने के लिए, वो पहले कंडीशन रखती है, कल की बात कर रहा हूँ, कल दो दिन की बात कर रहा हूँ, पहले कंडीशन रखती है कि स्वामी जी ये हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो मैं सुन सकती हूँ, आप ये वैदिक परंपरा ऐसा वैसा हमको नहीं सुनाएंगे, हम हमारे हिसाब से आप थोड़ा बताएंगे तो मैं आपको सुन सकती हूँ। अब पहले ही कंडीशन तो हमको रखना चाहिए। कितनी विचित्र संसार है, और इसमें एक विचित्रता, मैं जब इस रास्ते में मुझे इतने गदगद में हो गया, मैं क्या बताऊं इन वर्ड्स, आई कांट एक्सप्लेन यू। वो मैं देखा, अरे हम इतने हम छोटी सी चीज पढ़ने के लिए, जिस समय में कब की बात कर रहा हूं, 74 की बात कर रहा हूं, एक संस्कृत को एक थोड़ी सी हमको 20 मार्क था उसके पढ़ने के लिए, उस समय मैंने महीना 20 रुपया घर में पिताजी देते 20 रुपया ओनली संस्कृत पढ़ने के 20 रुपया, उस समय में चावल 1 क्विंटल 80 रुपया 90 रुपया, उस समय की बात कर रहा हूं, सीमेंट 1 गोनी 1 बैग 14 रुपया 17 रुपया है, उस समय में हम 20 रुपया देते थे संस्कृत पढ़ने के लिए, और ये लोग मुनि संत महात्मा हमको खिला रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, कमरा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक पैसा नहीं। अरे क्या कारण है इसके पीछे? मैं 2 साल तक जो देखते रह गया मैंने पूरा, हाँ किस लिए पढ़ा रहे हैं, कारण क्या है, कारण क्या है, ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग? अंदर से स्फुरन हुआ कि हाँ इस कारण से करते हैं, क्यों ऐसा करा रहे हैं स्वामी जी? जो भी कैलाशासर मंडलेश्वर है इनके पास रहा मैंने ब्रह्मचर्य अवस्था में, इनका आदर्श एक विचित्र आदर्श है, एक विचित्र महापुरुष है, कभी जमता नहीं है इनके बाद कोई उपदेश कभी कहा किसी को थोड़ी जमता नहीं होगा, लेकिन विचित्र पुरुष है। तो ऐसे जो है ऐसे चीज को व्यक्ति आज इस विद्या को लेने के लिए आता है, पहले कंडीशन रखता है कि हम तो इसी ढंग से रहेंगे। और जबकि वो स्वयं व्यक्ति कोई ट्यूशन को जा रहा है, हम ट्यूटोरियल से देखते हैं कि एक दसवीं पास पढ़ने वाला लड़का को लेते हैं 80,000, बारहवीं का लेते हैं 1,00,000, और जबकि कोई टेक्निकल वो नहीं है, कोर्स नहीं है, बारहवीं दसवीं पास होने के लिए व्यक्ति इतने पैसा लेता है और हमारे पास आकर के पूरा जम के बैठना है, पढ़ना है, और हमको एक पैसा नहीं देना है और बोलना है कि हमारे हिसाब से पढ़ाओ। क्या स्थिति है। अब मैं प्रश्न करने वाला हूं कि हम एक पैसा नहीं ले रहे हैं और कोई कंडीशन नहीं, उसके पीछे हमारा क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है कि हम कि कोई पैसा नहीं लेकर हम पढ़ाएंगे आपको? वो कंडीशन क्या है? यही शास्त्र की मांग है। इसके बदले में पैसा नहीं, कुछ नहीं, और उल्टा कपड़ा देना, खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ, तो उसके पीछे क्या चाहता है वो व्यक्ति? ये हमारा शास्त्र में इसमें गूढ़ है, इसमें गूढ़ता है। क्या चाहता है इसके बदले में, क्या चाहता है? क्योंकि ऐसा कभी भी संभव नहीं कि कोई व्यक्ति कोई चीज देता है और कुछ लेता नहीं है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। इसलिए क्या लेता है, क्या मांगता है, क्या चाहता है शास्त्र, क्या चाहता है वो विद्वान, वो गुरु क्या चाहता है, इसके पीछे रहस्य है। अब वो चीज को समझ के पूरा आप चले जाओ, आप ये विद्या जो है यूं गना पास में आता है, धीरे 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 आ जाता है, पूरा गले में लटक जाता है और आपको वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा चाहिए वो एक चीज, वो इसमें एक पूरा गुण है। ये चीज जो है यहां बताते हैं कि जो आश्रम वर्ण आश्रम सुधर्म जो है इसको निभाने से ये होगा, ये चीज यही दिखाते हैं। व्रतानी दानानी तपांसी यज्ञ सत्यम च तीर्थ आश्रम कर्म योगा। तीर्थ पर्यटन करो, वर्ण आश्रम का धर्म को निभाओ, ठीक है? क्योंकि ये जो वर्ण आश्रम धर्म, आज वर्ण आश्रम के धर्म के पीछे में कितनी बवाल है समाज में, और यही स्वधर्म है। जब यहां गीता में कहा श्रेयान स्वधर्म विगुण, स्वधर्म यदि विगुण है, हाँ कितनी भी बिगड़ा हुआ है लेकिन वो कल्याणकारक है। स्वधर्म में छोटा, स्वधर्म छोटा बड़ा नहीं होता है ना। स्वधर्म कभी मैं कोई चांडाल के कुल में पैदा हो गया, अब जैसे में पैदा होकर उठा, थोड़ा होश संभाला, अरे रे मैं ये चांडाल में एक कर्म नहीं करूंगा, वो कभी नहीं होता है। स्वधर्म कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, वो मनुष्य का विकास के लिए, वो विकास का सूत्र है, हमारे ऋषि मुनियों का यह आविष्कार है, वो विकास का सूत्र है। वो धर्म को पालन नहीं करके कभी भी कोई विकास नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्वधर्म के साथ में, मनुष्य के जन्म के साथ वो स्वधर्म जन्म हो जाता है। स्वधर्म को बता के किसी को जबरदस्त नहीं करवाया जाता है, स्वधर्म एक सहज धर्म है, स्वधर्म एक सहज धर्म है, वो बताकर किसी जबरदस्त नहीं करवाया जाता है। क्योंकि स्वधर्म जो मनुष्य जो पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके साथ साथ उसके पीछे वो ढो करके आता है, उस धर्म को ढो के आता है। आप बोलेंगे कैसे? आप पैदा होने से पहले जो मां जो गर्भ में लिया, आप पैदा होने से पहले वो मां थी, पिता माता थे, ठीक? और पिता माता ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय तो क्षत्रिय है, वैश्य तो वैश्य है, शूद्र तो शूद्र है, चांडाल हो तो चांडाल है। वो नाल की नाला की सफाई करती है, झाड़ू मारती, कोई चांडाल यदि होगा, हाँ आप देख रहे हैं, और ऐसे करते करते बच्चे को गर्भ मिल गया, नाला की सफाई करके पैसा कमाया और उसे चावल दाल खरीद करके उसे खिलाया, कौन सा कर्म करके खिलाया? हाँ वो तो ब्राह्मण का धर्म करके पालन करके नहीं खिलाया, झाड़ू मारा, सेवा किया, वो उससे पैसा कमाया, उस पैसे से चावल दाल खरीद किया और खाया, और खाकर उसने पेट में बच्चे को बढ़ाया, दूसरा धर्म तो पालन करके तो नहीं बढ़ाया। हाँ अच्छा, कोई अब जिस समाज में पैदा हुआ वो समाज उसका एक समाज होता है, क्षेत्रीय समाज होता है, ब्राह्मण समाज होता है, हा? समाज होता है, उस समाज में पैदा हुआ। और जहां उस पैदा होने से पहले कभी कोई बीमारी हुआ, मां जो फिर जड़ी बूटी खाई, कोई डॉक्टर पास गई जड़ी बूटी खाई। अच्छा, जड़ी बूटी के बिना वो बच्चा तो बच नहीं सकता है, दवाई के बिना बच नहीं सकता है। मेरा ये कहना है कि ये बच्चा पैदा होने से पहले जड़ी बूटी जो वनस्पतियों की वो ऋणी है, उस समाज की ऋणी है। बाजू में जो पड़ोसी है, वो पड़ोसी आकर के उस माँ को कोई बचाया होगा कि उसको बीमारी आ गया होगा, वो जानती नहीं, और कोई पड़ोसी मौसी आकर के उसको फिर खिलाया पिलाया, समाज का ऋणी है। सारे वो पैदा होने से पहले जो संतान होती है वो समाज का ऋणी, वनस्पतियों का ऋणी, पिता माता का, सारे ऋण को, सारे धर्म को ढोके पैदा होता है। अब वो बोलेगा कि मैं पैदा हो गया हूं, मैं भी टिपटाप होकर के बस पढ़ूंगा लिखा, बस मुझे मजा करना है, आज मुझको ये गंदगी, पिता माता इनके साथ कौन रहने वाला है, ये समाज हमको जरूरत नहीं, ये धर्म नहीं, नहीं हम किसी मोची काम कर सकते हैं। जब मोची की कुल में पैदा हुआ, नहीं हम नहीं कर सकते हैं। अब जो मोची काम करके तुमको खिला पिला कर जब पैदा किया, जिलाया तुमको, वो धर्म कहां जाएगा?